आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्ग जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्य वचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हमारे सभी श्रोता भाई बहनों व मित्रों को परम प्रधान परमेश्वर के नाम में हार्दिक अभिनंदन। हमें आशा है आप प्रभु की कृपा से कुशल हैं और आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम पुराने नियम से व्यवस्था विवरण की पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का नाम व्यवस्था विवरण दो कारणों से है। इस पुस्तक में संपूर्ण व्यवस्था को परमेश्वर के दास मूसा द्वारा इसराइल की पुनरावृत्ति के लिए दोहराया जा रहा है। दूसरी बात ये कि ये पुस्तक हमारे सम्मुख परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है, साथ ही मनुष्य द्वारा आज्ञा पालन के महत्व को भी दर्शाती है। इसलिए इस पुस्तक का मुख्य विषय प्रेम तथा आज्ञाकारिता है। आज हम परमेश्वर पिताजी के करुणामय व्यवहार के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वाइये से पूर्व के हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करें अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे। हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु और प्रेमी पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए जो आपने हमको प्रदान किए हैं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें ताकि हम इस पर विश्वास कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी संकट में है, क्लेश में है, किसी गंभीर रोग से पीड़ित है या किसी भयंकर पाप में फंसा हुआ है या अपने जीवन में अशांत है, निराश है, प्रभु आप उसकी सहायता करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर पिताजी का बीते समय में दर्शाया गया व्यवहार भविष्य के विश्वास का आधार है, अर्थात वो ये निश्चित करता है कि परमेश्वर पिताजी भविष्य में भी विश्वास योग्य रहेंगे जिस प्रकार से वो बीते समय में विश्वास योग्य रहे हैं। इस अध्याय में हम धार्मिक तथा राष्ट्रीय नियमों के विषय में भी अध्ययन करेंगे जिसका क्रम अग्रिम 21वें अध्याय तक जारी रहेगा। सो आइए हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखें व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय प्रथम दो पद। यह इस प्रकार से लिखा है, वे सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे दे रहा हूं उनको मानने की चौकसी करना कि तुम जीवित रहो तथा संख्या में बढ़ते जाओ और जिस देश को यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी उस देश में प्रवेश करके उसको अधिकार में कर लो। फिर तू उस संपूर्ण मार्ग को स्मरण रखना जिस पर इन 40 वर्षों तक तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इस जंगल में से इसलिए ले आया कि वह तुझको नम्र करे तथा जांच कर ये जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हमने पढ़ा वे सब आज्ञाएं, कौन सी आज्ञाएं? वे आज्ञाएं जिन्हें हमने सातवें अध्याय के अंतिम पदों में देखा कि उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में भस्म कर देना, तू उन पर मढ़े हुए सोना चांदी का लोभ ना करना, ना उनको निकाल कर अपने लिए रखना, ऐसा ना हो कि तू उसके द्वारा फंदे में पड़े, क्योंकि यह तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए घृणित है। तू किसी घृणित वस्तु को अपने घर में ना लाना और ना उसके समान शापित बन जाना। तू उसका पूर्णता बहिष्कार करना और उससे पूर्णता घृणा करना, क्योंकि वह शापित है। सो प्रभु परमेश्वर उनसे कहते हैं कि जो आज्ञाएं मैंने दी हैं उनका तुम पालन करना। प्रभु जी चाहते हैं कि वे प्राचीन अनुभवों को स्मरण करें कि किस प्रकार परमेश्वर पिताजी ने उन्हें 40 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया तथा अपनी सामर्थ्य, क्रोध तथा दया को उन पर प्रकट किया। परमेश्वर पिताजी चाहते हैं कि हम अपने बीते हुए समय को स्मरण रखें। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री के प्रथम अध्याय के 6 पद में इस प्रकार लिखते हैं, और जब वो लिख रहे हैं तो उनका विशेष संकेत मसीह के विश्वासी जन की ओर है। वो कहते हैं कि मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य प्रारंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। प्रेरित पौलुस का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर पिताजी ने हमारी अगुवाई की है और हमें आशीषित किया है। हमें इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए। यदि उस प्रभु ने बीते समय में हमारी सहायता की है तो वह भविष्य में भी हमारी सहायता करेगा, और बीते समय का अनुभव हमें भविष्य के लिए भी विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मित्रों, परमेश्वर पिताजी ने इसराइल को जंगल में क्यों परखा? ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां परमेश्वर का वचन हमें इसका स्पष्ट उत्तर देता है कि परमेश्वर ने उन्हें नम्र और दीन बनाने के लिए जंगल में परखा, और ये जानने के लिए कि उनके हृदय में वास्तव में क्या है, उनके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है या नहीं। जांच के द्वारा कोई भी धातु परखी जाती है। परीक्षा या जांच से पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति परमेश्वर की संतान है या नहीं, अमुक व्यक्ति के हृदय में क्या है। आप भी उसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जिसे आप परख लेते हैं। आपका मित्र कौन है, आपसे प्रेम कौन करता है, संकट के समय इन बातों का ज्ञान होता है। तब 3 पद में हम पढ़ते हैं, उसने तुझको दीन किया, तुझे भूखा होने दिया और तुझे ऐसे मन्ना से तृप्त किया जिसे ना तो तू और ना तेरे पूर्वज जानते थे, कि तू जान ले कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता परंतु प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो यहोवा के मुख से निकलता है। मित्रों, अपने परखे जाने के समय हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को यही उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु प्रत्येक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इस उत्तर से स्पष्ट हो गया कि प्रभु यीशु मसीह के हृदय में क्या था। आप मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 4 पद में और लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 4 पद में इस कथन को देख सकते हैं। आज विश्वासी का सबसे बड़ा धन प्रभु का पवित्र वचन है। ये वास्तविक धन है जो प्रभु की संतान के पास होना चाहिए। ये आत्मिक भोजन है, ये पवित्र मन्ना है जो स्वर्ग से उतरा है। इसकी हमें नितांत आवश्यकता है। 4 पद में हम पढ़ते हैं, इन 40 वर्षों में ना तेरे तन पर के वस्त्र पुराने हुए और ना तेरे पैर सूजे। मित्रों, ये आत्मिक मन्ना वास्तव में अद्भुत भोजन है। यह हमारे लिए संतुलित आहार है जो बुद्धि, आत्मा व शरीर का पूर्ण विकास करती है। ये हमारी संपूर्ण शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। तब 5-10 पदों में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार तुझे अपने मन में जान लेना चाहिए कि जैसे कोई मनुष्य अपने पुत्र को अनुशासित करता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे अनुशासित करता आया है। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करके उसके मार्गों पर चलता रहे तथा उसका भय मान, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश अर्थात तराइयों तथा पहाड़ियों में से बहते हुए जल धाराओं, स्रोतों तथा झरनों के देश में लिए जाता है। ये देश गेहूं तथा जौ का, दाखलताओं, अंजीर तथा अनार वृक्षों का और जैतून तेल तथा मधु का देश है। ये ऐसा देश है जिसमें तुझे भरपेट भोजन खाने को मिलेगा और किसी वस्तु की घटी ना होगी। ऐसा देश जिसके पत्थर लोहा हैं तथा जिसकी पहाड़ियों में से तांबा खोदा जा सकता है, जब तू खाकर तृप्त हो चुके तब तू अपने परमेश्वर यहोवा को उस उत्तम देश के लिए जो उसने तुम्हें दिया है धन्यवाद देना। मित्रों, यहां हम एक विशेष बात पर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर पिता ने इसराइल को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के पश्चात ही संपन्नता की प्रतिज्ञा दी, उससे पूर्व नहीं। इसी प्रकार वो विश्वासी को भी इस संसार में कोई संपन्नता का वचन नहीं देता। वो ऐसा कोई वायदा नहीं करता कि आपको शारीरिक रूप से इस संसार में संपन्नता प्राप्त हो। इफिसियों की पत्री के प्रथम अध्याय के तीसरे पद में हम स्वर्गीय आशीषों के विषय में पढ़ते हैं। हमारी संपन्नता स्वर्ग में है। परमेश्वर पिता हमें स्वर्गीय आशीषें देने की प्रतिज्ञा करते हैं, अर्थात स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीष। नए नियम में ऐसा कोई पद नहीं है जिसमें सांसारिक या इस जीवन से संबंधित किसी आशीष का वर्णन किया गया हो। 11 से 16 पदों में चेतावनियां जारी हैं, और तब हम 16 से 20 पदों को देखते हैं। आइए देखें। उसने तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसको तेरे पूर्वज जानते भी नहीं थे, कि वह तुझको नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। तू अपने मन में ये ना कहने लगे कि मैंने ये सारी संपत्ति अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल से कमाई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझको संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है कि वह अपनी उस वाचा को पूरी करे जिसकी शपथ उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, जैसा आज प्रकट है। फिर ऐसा होगा कि यदि तू कभी अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर पराए देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना तथा पूजा करे, तो आज मैं तेरे विरुद्ध साक्षी देता हूं कि तू निश्चय नष्ट हो जाएगा। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सामने नाश करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नाश हो जाओगे। मित्रों, ये भयानक और गंभीर चेतावनी है। इसराइल की संपन्नता आज्ञा पालन में है। यदि वे आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर पिताजी उनकी कोई सहायता नहीं करेंगे। जैसे कि अन्य जातियों के साथ हुआ, वैसा ही उनके साथ भी होगा। अन्य जाति अनाज्ञाकारिता के कारण नाश हो गई। आज्ञाकारिता उन्हें अन्य जातियों से पृथक रखेगी। यहां हम मसीही भाई बहनों के लिए एक विशेष संदेश है। मित्रों, जब हम विश्वास द्वारा प्रभु की संतान बन चुके हैं तो हमें आज्ञाकारिता के महत्व को भी समझना है। आइए हम अपना अहंकार, अपनी इच्छाएं, अपने संवेग, अपनी शारीरिक लालसाओं को प्रभु को समर्पित कर दें, उसके चरणों में डाल दें और हृदय से उसकी आज्ञाओं का पालन करें, जिससे कि हमारा भला हो। इस प्रकार से हम 8वें अध्याय को समाप्त करते हैं और 9वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। आप हमारे साथ देखें व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 1 से 6 पद। इन पदों में इस प्रकार से वर्णन है। प्रभु के दास मूसा कहते हैं, इसराइल सुन, आज तू इसलिए यर्दन पार करने वाला है कि तू वहां प्रवेश करके अपने से बड़ी तथा सामर्थ्य जातियों पर और उनके बड़े बड़े नगरों पर अधिकार करे, जिनकी शहरपनाह आकाश को स्पर्श करती है। ऐसी जाति जिसके लोग बड़े बड़े और लंबे लंबे अर्थात अनाकवंशी हैं, जिनको तुम जानते हो तथा जिनके विषय कहा जाता है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। अतः आज जान ले कि ये तेरा परमेश्वर यहोवा ही है जो भस्म करने वाली आग के समान तेरे आगे पार हो रहा है। वही उनको तेरे सामने से नाश करेगा तथा उनको तेरे अधीन कर देगा, जिससे कि तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको खदेड़कर शीघ्र नाश कर दे। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से खदेड़ चुके, तब अपने मन में ये ना कहना कि यहोवा ने मेरी धार्मिकता के कारण इस देश को अधिकार में करने के लिए मुझे यहां पहुंचाया है, परंतु इन जातियों की दुष्टता के कारण ही यहोवा तेरे सामने से उन्हें निकाल बाहर कर रहा है। तू अपनी धार्मिकता अथवा अपने मन की खराई के कारण उनके देश पर अधिकार करने नहीं जा रहा है, परंतु इन जातियों की दुष्टता के कारण ही तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से खदेड़ रहा है कि वह अपने उस वचन को पूरा करे जिसकी शपथ यहोवा ने तेरे पूर्वजों अर्थात इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी। तू अब ये जान ले कि यह उत्तम देश जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे अधिकार में करने के लिए दे रहा है, ये तेरी धार्मिकता के कारण नहीं है, क्योंकि तू तो एक हटीली जाति है। मित्रों, आज अर्थात इस दिन का तात्पर्य 24 घंटे वाले दिन से नहीं है, जैसा कि यहां पर प्रथम पद में हमने देखा, हे इसराइल सुन, आज तू इसलिए यर्दन पार करने वाला है। ये 24 घंटे वाला दिन नहीं है, परंतु उस समय से है जब वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने जा रहे हैं। दूसरे पद में परमेश्वर पिताजी स्वयं उस देश के विषय में उन्हें बता रहे हैं, वहां कैसी सामर्थी जातियां रहती हैं, फिर भी प्रभु ने उन्हें उस देश में जाने के लिए आज्ञा दी। उन्होंने एक बार वहां जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि वो उन जातियों पर उस देश पर अधिकार कर सकेंगे। परमेश्वर ने उन्हें बताया, वहां तो राक्षस रहते हैं। समस्त समस्याओं को बताने के साथ साथ परमेश्वर पिता ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलकर उन्हें तुम्हारे सामने से नाश कर दूंगा। मित्रों, प्रभु परमेश्वर ने उनके साथ जाने का वायदा किया, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। मेरे मित्रों, जो परमेश्वर के साथ हैं वो बहुसंख्यक हैं, और इस प्रकार सच्ची कलीसिया अल्पसंख्यक नहीं होती। हम यदि परमेश्वर के साथ हैं तो हम बहुसंख्यक हैं और हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। चौथा पद मेरे और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। यहां लिखा है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से खदेड़ चुके, तब अपने मन में ये ना कहना कि यहोवा ने मेरी धार्मिकता के कारण इस देश को अधिकार में करने के लिए मुझे यहां पहुंचाया है। परंतु तू क्या कहना, परंतु इन जातियों की दुष्टता के कारण ही यहोवा तेरे सामने से उन्हें निकाल बाहर कर रहा है। मित्रों, इस पद में परमेश्वर पिताजी कह रहे हैं कि वे उन जातियों को उस देश से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वे दुष्ट हैं। यहां परमेश्वर पिताजी स्पष्ट बता रहे हैं कि वो इसराइल को उनकी धार्मिकता के कारण उस देश में नहीं बसा रहे हैं, क्योंकि अंतिम पद में अर्थात छठे पद में हमने देखा कि ये तेरी धार्मिकता के कारण नहीं है, क्योंकि तू तो एक हटीली जाति है। तो परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारी धार्मिकता के कारण मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। और तब पांचवें पद में हमने देखा, तू अपनी धार्मिकता अथवा अपने मन की खराई के कारण उनके देश पर अधिकार करने नहीं जा रहा है, परंतु इन जातियों की दुष्टता के कारण ही तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से खदेड़ रहा है कि वह अपने उस वचन को पूरा करे जिसकी शपथ यहोवा ने तेरे पूर्वजों अर्थात इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब से खाई थी। मित्रों, परमेश्वर पिताजी ने उन्हें मिस्र में उनकी चिल्लाहट को सुनकर उनके किसी भले कार्य के कारण उनकी सहायता नहीं की थी। परमेश्वर की सहायता का आधार इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के साथ बांधी गई वाचा थी। इनको प्रभु परमेश्वर ने प्रेम किया था, इन्होंने प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। छठे पद में प्रभु जी हमको बताते हैं कि हम अपने भले कार्यों के द्वारा नहीं बचाए जाते। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर पिताजी मुझे और आपको इसलिए नहीं बचाते या हमारा उद्धार इसलिए नहीं करते कि हम भले या धर्मी हैं? वो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के कारण बचाते हैं। जैसा कि यशायाह नबी ने अपनी पुस्तक के 46वें अध्याय के 8 से 11 पदों में बताया है कि उद्धार की योजना परमेश्वर ने स्वयं ही बनाई है, और इसलिए आपको उद्धार की योजना या मुक्ति की योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो उस योजना पर विश्वास करना है। परमेश्वर पिताजी स्वयं उस योजना को पूर्ण कर रहे हैं और उन्होंने उसको पूर्ण किया है। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। वो उन्हीं के कारण अर्थात परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के कारण ही हमें बचाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में परमेश्वर पिता की प्रत्येक मांग अर्थात आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। यहां हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में सुसमाचार के बीज को देखते हैं जो नए नियम में वृक्ष का रूप ले लेगा, क्योंकि ये सब बातें नए नियम में परमेश्वर के अनुग्रह की भूमिका की ओर संकेत करती हैं। 7-14 पदों में प्रभु के दास मूसा इसराइल प्रजा को बीते हुए अपराधों के विषय में बता रहे हैं। इन्हें हम निर्गमन की पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं। जब मैं पत्थर की दोनों पटियाओं को अर्थात उस वाचा की पटियाओं को जो यहोवा ने तुम्हारे साथ बांधी थी प्राप्त करने को पर्वत पर चढ़ गया, तब मैं 40 दिन और 40 रात पर्वत पर ही रहा, जहां मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। और इसके पश्चात 18 पद में हम देखते हैं प्रभु के दास मूसा कहते हैं कि तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और उसे क्रोधित किया, मैं पहले के समान यहोवा के सामने मुंह के बल गिरकर 40 दिन 40 रात पड़ा रहा, और ना तो मैंने रोटी खाई और ना पानी पिया। और तब 25वें पद में भी इसी प्रकार से प्रभु के दास बताते हैं, यहां लिखा है, यहोवा ने कहा था कि वो तुम्हें नाश कर देगा, अतः यहोवा के सामने मैं 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा। प्रिय मित्रों, इन पदों में हम देखते हैं कि प्रभु के दास मूसा वास्तव में परमेश्वर का हृदय रखते थे। उनके पास परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का धीरज और परमेश्वर का तरस था। इसीलिए उन्होंने प्रजा के लिए ये सारा कष्ट उठाया। वो वास्तव में एक महान अगुवे थे। उन्होंने एक अच्छा उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। 25-29 पदों में हम प्रभु के दास मूसा द्वारा मध्यस्थता की प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं। यहां हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने कहा कि वो तुम्हें नाश कर देगा, अतः यहोवा के सामने मैं 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, और मैंने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर यहोवा, तू अपनी प्रजा अर्थात अपने उत्तराधिकार को नाश मत कर, जिसे तूने अपनी महानता के द्वारा छुटकारा दिया तथा जिसको अपने सामर्थी हाथ के द्वारा मिस्र से निकाला है। अपने दास इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब को स्मरण कर, इस जाति के अटीलेपन या इसकी दुष्टता या इसके पाप पर दृष्टि ना कर, अन्यथा जिस देश से तू हमें निकाल लाया वहां के लोग ये कहेंगे कि यहोवा उनको उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने में असमर्थ था, और कि वह उनसे घृणा करता था, और इसलिए वह उन्हें जंगल में मार डालने के लिए निकाल ले आया। फिर भी वे तेरी प्रजा के लोग, हाँ तेरा निज भाग हैं, जिन्हें तू अपने बड़े सामर्थ्य तथा अपनी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया है। मित्रों, हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करना जानते थे और वो अपनी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करते थे, और इस कार्य में पवित्र आत्मा स्वयं हमारी सहायता करता है। यदि आप भी परमेश्वर पिता को जान लें और उनके मार्ग को भलीभांति पहचान लें तथा परमेश्वर पिता के स्वभाव को समझ लें, तो परमेश्वर पिताजी आपकी प्रार्थना भी सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। अब इन्हीं वचनों के साथ प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें और आपकी सहायता करें। आमीन।
तुम बिन कौन हरे,
कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। श्रोता, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।